ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य में कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ा। धान के साथ ही दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा इसका लाभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हथियारबंद माओवादियों से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को 3 महीने का सेवा विस्तार दिया। और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डीएपी खाद की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में किसानों को वैकल्पिक खाद उपलब्ध कराई जाए। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कृषक उन्नति योजना का लाभ अब धान उत्पादक किसानों के साथ ही दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा। ये निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया। बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में पेश है ये रिपोर्ट।
राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ा दिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि खरीफ वर्ष 2024 में पंजीकृत किसान जिन्होंने धान की फसल लगाई थी और समर्थन मूल्य पर धान बेचा था, उनके द्वारा चालू खरीफ में धान की फसल के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का आदि फसल की खेती की जाती है, तब भी उन्हें कृषक उन्नति योजना के तहत आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
कृषक उन्नति योजना के प्रचलित निर्देशों को संशोधन करते हुए इसके दायरे को और विस्तृत कर दिया गया है। अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ साथ पंजीकृत धान फसल के स्थान पर अब दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा।
श्री साव ने बताया कि मंत्रिपरिषद के एक अन्य फैसले में छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन और विनियमन संबंधी विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। यह कदम सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय पेंशन भुगतान संबंधी दायित्वों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड के गठन तथा इसके प्रबंधन और विनियमन संबंधी विधेयक के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। इससे राजस्व में असामान्य वृद्धि या कमी का समुचित प्रबंधन और आर्थिक मंदी के समय वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होगी। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में लॉजिस्टिक सेक्टर के समग्र विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस पॉलिसी से छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगा तथा निर्यात अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। इस नीति के माध्यम से ड्राईपोर्ट इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना को प्रोत्साहित करने से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों तथा स्थानीय उत्पादकों को निर्यात बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। राज्य के प्रचुर वन संसाधन, वनोपज और वन औषधि उत्पाद के निर्यात के लिए इकोसिस्टम तैयार होगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के कुछ कानूनों के प्रावधानों का गैर आपराधिकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ जनविश्वास विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। समाचार डेस्क, आकाशवाणी रायपुर।
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि आज राज्य कैबिनेट की बैठक में अमिताभ जैन को मुख्य सचिव के पद पर 3 महीने का सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया गया।
सरकार ने अभी ये निर्णय किया है कि वर्तमान मुख्य सचिव को आगामी 3 माह के लिए काम करने के लिए कहा है और सरकार के समक्ष ये विषय विचाराधीन है कि अगले मुख्य सचिव कौन होंगे, पर अभी अमिताभ जैन जी को आने वाले 3 महीने के लिए मुख्य सचिव के रूप में काम करने के लिए सहमति दी।
गौरतलब है कि मुख्य सचिव अमिताभ जैन आज सेवानिवृत्त होने वाले थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हथियारबंद माओवादियों से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। उन्होंने तेलंगाना के निजामाबाद में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासियों, पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों की हत्या करने वालों से कोई बात नहीं हो सकती। केंद्रीय गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवादियों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल होने का आह्वान किया।
सारे लोग हथियार छोड़ दो और सरेंडर करो, मगर सरेंडर नहीं करेंगे तो हमने तय किया है 31 मार्च 2026 के पहले इस देश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे। हमारी सरकार का नीति है जिनके हाथ में हथियार है उनसे कोई बातचीत नहीं होगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज रायपुर स्थित उनके निवास में केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने भेंट की। इस दौरान राज्य में कोयला खनन और उत्पादन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में राज्य में कोयला उत्पादन, खनन कार्यों की प्रगति, श्रमिकों से जुड़ी सुविधाओं और विकास कार्यों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में कोयला और ऊर्जा क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को साकार करने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर सीएसआर मद की राशि का उपयोग अधिक से अधिक जन कल्याणकारी कार्यों में करने के संबंध में विशेष रूप से चर्चा की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी खाद की कमी के कारण यदि प्रदेश में डीएपी खाद की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो डीएपी के विकल्प के प्रति किसानों को जागरूक किया जाए। श्री कश्यप ने नवा रायपुर में सहकारिता और उर्वरक कंपनियों के अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि किसानों को वैकल्पिक खाद उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और केंद्र संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले कल एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर आ रहे हैं। वे कल राजधानी में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित योजनाओं की समीक्षा के लिए राज्य शासन के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्री कल शाम ही रायपुर से मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस सरकार द्वारा 1975 में लगाए गए आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर 2 जुलाई को रायपुर के अग्रसेन धाम में युवा संसद का आयोजन किया जाएगा। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में प्रदेश भर से युवा प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस युवा संसद का उद्देश्य आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों और नागरिकों को मिले संवैधानिक अधिकारों को कुचलने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देना है। गौरतलब है कि 25 जून 1975 को देशभर में इमरजेंसी यानी आपातकाल लागू किया गया था। इस दौरान विपक्षी पार्टियों के अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जिन्हें मीसाबंदी कहा जाता है।
पंडित हनुमान प्रसाद जी मिश्रा के आपातकाल में मीसाबंदी होने के पश्चात परिवार को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। उनके पुत्र श्री रामावतार जी मिश्रा भिलाई स्टील प्लांट से जो नियुक्ति पत्र प्राप्त था उसका उनको त्याग करना पड़ा। साथ ही साथ जो उनका व्यवसाय था वो भी देखरेख के अभाव में बंद हो गया। अलग अलग स्तर पे घर वाले परेशान तो थे ही, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से।
धमतरी से मीसाबंदी रहे स्वर्गीय हनुमान प्रसाद मिश्रा के पौत्र रोहिताश मिश्रा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत नोडल डीआर टीबी सेंटर मेकाहारा रायपुर में दवा प्रतिरोधक टीबी के मरीजों के लिए नए बीपाल एम रेजिम की शुरुआत की गई है। पहले टीबी के दवा प्रतिरोधी मरीजों को 9 से 18 महीने तक 5 से 7 दवाएं प्रतिदिन लेनी पड़ती थीं, लेकिन बीपाल एम रेजिम के तहत इलाज की अवधि केवल 6 माह रह गई है और अब केवल 4 आधुनिक दवाओं से इलाज संभव होगा। इन दवाओं की अनुमानित लागत 1 लाख रुपए से अधिक है, जिसे सरकार की ओर से पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। जांजगीर चांपा मुख्य मार्ग पर जरवे गांव के ग्रामीणों ने खराब सड़क के मुद्दे पर आज चक्का जाम किया। विधायक व्यास कश्यप के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। जिले के अपर कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम समाप्त किया। शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ आज आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने 4वां पूरक चालान पेश किया। विशेष कोर्ट में 1100 पन्नों का चालान पेश किया गया। इस चार्जशीट में लखमा की भूमिका का उल्लेख किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ा। धान के साथ ही दलहन, तिलहन, मक्का आदि की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा इसका लाभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हथियारबंद माओवादियों से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को 3 महीने का सेवा विस्तार दिया और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डीएपी खाद की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में किसानों को वैकल्पिक खाद उपलब्ध कराई जाए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।